दिन भर 22 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ईवीएम हैकिंग मामले ने एक बार फिर गरमाई भारत की राजनीति।
ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस पर अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने किया प्रवासी भारतीयों का स्वागत।
आप भी अपने दिलों में भारत और भारतीयता को संजोए हुए इस धरती की ऊर्जा उसे दुनिया को परिचित करा रहे हैं।
होगी रिपोर्ट कुंभ मेले पर हुए खर्चे और उससे होने वाली कमाई पर, और सुनिएगा विशेष रिपोर्ट हैकिंग करने वाले युवाओं के बारे में। ये सब ठहर कर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। ईवीएम के कथित हैकिंग के दावे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस प्रायोजित कहा है। वहीं विवादों के केंद्र में आए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मामले की जांच कराने की मांग की है। वहीं चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर इस मामले में FIR दर्ज कराने की बात कही है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा ने देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ उपजे असंतोष के बीच वो अपना एक विदेशी दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की ओर से की गई हिंसा की निंदा की है और वादा किया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्षी MDC के नेता नेल्सन चामिसा ने देश में फैले डर को खत्म करने की मांग की है। इस बीच जिम्बाब्वे के सूचना मंत्रालय के स्थायी सचिव निक मननगागवा ने प्रशासन की कार्रवाई का बचाव किया है। उन्होंने अशांति के लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कुछ लोग स्कूलों में घुस गए, बच्चों को भगाने लगे, शिक्षकों पर हमले करने लगे। उन्होंने सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए, कई चीजें जला दी। किसी भी देश में इस तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये थे जिम्बाब्वे के सूचना मंत्रालय के स्थायी सचिव निक मननगागवा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए एक पूर्व अमरीकी नौसैनिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। पॉल वेलन को दिसंबर के आखिर में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि उनके पास रूस से जुड़ी कुछ खुफिया जानकारी है। हालांकि वेलन अपने आप को बेगुनाह बताते हैं। कोर्ट के बाहर उनके वकील ने कहा कि पॉल वेलन रूस में घूमने के लिए आए थे। इस दौरान किसी ने उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी स्टिक दी जिसमें कुछ खुफिया जानकारी थी, लेकिन वेलन ने उस जानकारी को नहीं देखा। पॉल को नहीं पता था कि उस ड्राइव में कुछ खुफिया जानकारी है। वो उसे हासिल नहीं करना चाहते थे, वो तो रूस में सिर्फ छुट्टियां बिताने के लिए आए थे। ये थे पॉल वेलन के वकील के शब्द। भारत के त्रिपुरा राज्य की पुलिस ने 31 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में घुसने की अनुमति न मिलने के बाद ये लोग शुक्रवार से भारत की सीमा पर फंसे हुए थे। इस समूह के साथ बच्चे भी थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग बिना किसी दस्तावेज के भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सहायता एजेंसियों के मुताबिक भारत में रह रहे 1000 से भी ज़्यादा रोहिंग्या म्यांमार भेजे जाने के डर से भागकर बांग्लादेश चले गए हैं। अफगान अधिकारियों के मुताबिक सोमवार को हुए तालिबानी हमले में मारे गए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। ये हमला वर्दक प्रांत में एक सैन्य परिसर पर हुआ था। हमले में 40 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। जापान के दो सबसे बड़े स्टोर्स ने इस साल देश में होने वाले रग्बी वर्ल्ड कप और 2020 ओलंपिक गेम्स से पहले पोर्नोग्राफी से जुड़ी पत्रिकाओं की बिक्री बंद करने का फैसला किया है। इन दोनों आयोजनों के दौरान जापान में पर्यटक भारी तादाद में आएंगे। 7-Eleven की पूरे जापान में 20,000 से ज़्यादा दुकानें हैं। उसने कहा कि वो गर्मियों तक इस तरह की पत्रिकाओं की बिक्री बंद कर देगा। यूरोपीय संघ ने क्रेडिट कार्ड कंपनी मास्टर कार्ड को 570 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। मास्टरकार्ड पर यह जुर्माना यूरोपीय संघ के एंटी ट्रस्ट नियम तोड़ने के लिए लगाया गया है। कहा जा रहा है कि कंपनी के इंटरचेंज शुल्क के नियमों की वजह से यूरोपीय संघ में ग्राहकों और व्यापारियों को नुकसान हुआ। BBC समाचार।
बाईस जनवरी मंगलवार के दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। दिल्ली में कल रात से बारिश हो रही है। हिमालय से आ रही हवाओं ने मौसम को ठंडा कर दिया है, मगर लंदन में कल हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली का राजनीतिक पारा ऊपर चढ़ा दिया है। एक कथित हैकर ने कल भारत के कई चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ में लिप्त होने का दावा किया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ईवीएम हैकिंग को लेकर फिर से वाकयुद्ध छिड़ गया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से इस कथित हैकर के खिलाफ अफवाह उड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज करने और हैकिंग के दावों की जांच करने के लिए कहा है। पूरा ब्यौरा दे रहे हैं फैसल मोहम्मद अली।
मुख्तार अब्बास नकवी के कल के हमले के बाद आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को ईवीएम के कथित हैकिंग मामले में घेरने की कोशिश की।
ये पूरा आयोजन कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। वो लोग जो कांग्रेस के नजदीक हैं, वो लोग जो कांग्रेस के लिए प्रचार का काम करते हैं। अब ये श्रीमान सैयद सुजा कहां से प्रकट हो गए भाई? मालूम हुआ कि बहुत बड़े हैकर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। इनवाइट में कहा गया था, जो लंदन में उनका कार्यक्रम था, कि ये ईवीएम को हैक करते हुए दिखाएंगे। वो कितना बड़ा बकवास कर रहे हैं विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए।
सोमवार को लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में सैयद शुजा नामक कथित हैकर ने भारत में चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। इस कार्यक्रम को यूरोप में स्थित इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लंदन में आयोजित किया गया था। हालांकि कथित हैकर ने दावा किया था कि वो भारत में चुनाव के दौरान ईवीएम हैक कर चुका है, लेकिन उसने इसका कोई प्रमाणिक सबूत सामने नहीं रखा। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि विपक्षी दल ईवीएम को लेकर तभी शिकायत करते हैं जब वो हार जाते हैं।
ईवीएम आज से नहीं, बहुत दिनों से काम कर रहा है। आपको भी मालूम है, अब लगभग 20 साल हो गए ईवीएम को काम करते। जहां तक मुझे याद है कि 96 के चुनाव के बाद से ईवीएम इन्वोक है। 10 साल यूपीए सत्ता में रही कांग्रेस की अगुवाई में तो ईवीएम ठीक था। 2007 में मायावती जी यूपी में कस के जीती तो ईवीएम ठीक था। 2012 में उसी ईवीएम से अखिलेश यादव जीते उत्तर प्रदेश में तो ईवीएम ठीक था। ममता जी बंगाल में जीती विधानसभा में दो बार और लोकसभा में काफी जीती तो ईवीएम ठीक था।
भारतीय चुनाव आयोग ने शुजा के दावे को सिरे से खारिज किया है और एक बयान में उसने इस मामले में केस दर्ज करने की बात कही है। भारतीय चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने के दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं, बीजेपी द्वारा भी जब वो विपक्ष में हुआ करती थी। चुनाव आयोग ने इस पर एक खुला चैलेंज भी दिया था, लेकिन तब कोई सामने नहीं आया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की लंदन में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए।
हमारे बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में संजय को मालूम होगा, एक कहावत है, जहां जहां पड़े चरण संतन के तहां तहां भंडाधार। ये व्यंग है। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। किस हैसियत से कपिल सिब्बल वहां उपस्थित थे? मेरा स्पष्ट आरोप है कि कपिल सिब्बल पूरे मामले की कांग्रेस की तरफ से मॉनिटरिंग करने गए थे।
कपिल सिब्बल ने इसके जवाब में कहा,
उन्होंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, और इलेक्शन कमीशन को भी इनविटेशन भेजा था। क्योंकि मैं आशीष रे को अच्छी तरह से जानता हूं, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल ईमेल भेजी। मैंने उनको बताया कि मैं कुछ पर्सनल काम के लिए भी वहां आ रहा हूं। बोले तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि वो ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चला गया।
सिब्बल का कहना था कि ये मामला राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि देश में साफ सुथरे चुनाव का है। उन्होंने ईवीएम निर्माण के सिलसिले में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कुछ लोगों के संबंध में गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिए। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
हैकिंग को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गर्मागर्मी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे, जहां उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन कल शुरू हुआ था। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया था। समापन कल होगा जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आमतौर पर यह सम्मेलन 9 जनवरी को होता है, लेकिन इस बार इस सम्मेलन को कुंभ और गणतंत्र दिवस से जोड़ने की कोशिश की गई है। बनारस में हो रहे सम्मेलन को खास बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत का अंतर्राष्ट्रीय दूत बताया।
बनारस नगरी चीर काल से ही भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और ज्ञान की परंपरा से दुनिया में देश का परिचय कराती रही है। आप भी अपने दिलों में भारत और भारतीयता को संजोए हुए इस धरती की ऊर्जा उसे दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साथियों, मैं आपको भारत का ब्रांड एम्बेसडर मानने के साथ ही भारत के सामर्थ्य और भारत की क्षमताओं, देश की विशेषताओं का प्रतिनिधि भी और प्रतीक भी मानता हूं।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सिलसिला 2003 से शुरू हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अब ये सम्मेलन हर 2 साल बाद होता है और विदेशों में बसे भारतीयों के लिए इसकी क्या अहमियत रखता है ये आयोजन, ये जानने के लिए मैंने लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ या सोवास में प्राध्यापक सुबीर सिन्हा से संपर्क किया, जो पिछले 20 वर्षों से लंदन में रह रहे हैं और प्रवासी भारतीय दिवस पर नज़र रखते रहे हैं।
जिस जमाने में सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह नहीं हुआ करता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि लोग जो है 5, 6, 7, 8, 10 साल तक नहीं आते थे वापस, तो एक तरह से उनकी जो लिंक्स थी भारत के साथ वो कमजोर होती चली जा रही थी। तो एक तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी हुआ पिछले 15-20 साल से, तो उसमें उनको एक आत्मसम्मान आप कह लीजिए कि वो जागा कि भाई हमारे देश में भी जो है ग्रोथ हो रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि सोशल मीडिया और ये टेलीकम्युनिकेशन की वजह से उनकी लिंक जो थी वो इंडिया से बढ़ी। और तीसरी चीज ये हुई कि गवर्नमेंट ने इसको एक फंक्शन बना दिया कि भाई हर साल हम इसको होल्ड करेंगे, और उसमें एक तो मतलब निवेशक आते हैं और दूसरे वो आते हैं जो कि अपने अपने देशों में, जो कि यूके, यूएस या बाकी देशों में है, वो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं वो लोग ज्यादातर उसमें आते हैं। तो एक तो ये हुआ, फिर बीच बीच में ये चला था खास करके चाइनीज मॉडल को देखते हुए कि चाइनीज जो प्रवासी होते हैं उन्होंने अपने देश के अंदर बहुत ज्यादा पैसा निवेश किया है, और चाइनीज कैपिटलिज्म या ग्रोथ सक्सेस आप कह लीजिए, तो उसमें चाइना वालों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो चाइना से बाहर रहते हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे वापस भेजे हैं। अब इंडिया वाले भी भेजते हैं रेमिटेंसेज, लेकिन जो रेमिटेंसेज की जो इकोनॉमी है वो खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा अहम है जो कि थोड़ा नीचे तबके के हैं, खास करके जो कि गल्फ वगैरह के देशों से पैसे वगैरह भेजते हैं। तो एक तरह से ये एक एग्जीबिशन किस्म का हो गया है नेशनल प्राइड का, जो कि अच्छी चीज है।
निराई लोगों के जो मूल मुद्दे हैं उनमें एक मुद्दा, जैसे खासतौर से दोहरी नागरिकता वाला मुद्दा, हमेशा बीच बीच में उठता रहा है, इनको लेकर कोई हलचल
नहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई हलचल हुई। डुअल सिटीजनशिप की जो बात है उसको मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी वो बिल्कुल ठीक से छूना नहीं चाहती है, और इसके मेरे ख्याल से 2-3 कारण भी हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो प्रवासी भारतीय हैं उसमें खास करके जो ज्यादा सक्रिय हैं वो एक या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से सुलझाना चाहिए। ऐसे बाकी और भी देश हैं जहाँ पे प्रवासी जो है, जैसे जापान हुआ या इटली हुआ, उनको पूरा हक है कि वो जाकर के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इटली के पार्लियामेंट में 18 या 20 सीट हैं जो कि प्रवासी इटालियंस के लिए हैं, जो कि अगर आप इटालियन मूल के हों और अर्जेंटीना में हों तो आप खड़े हो सकते हैं, आप वहां पे वापस सेनेट में आ सकते हैं। ऐसी कोई प्रोविजन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए ऐसा है कि कोई भी देश और उसकी नागरिकता जो है वो देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहती है।
तस्वीरें जो दिखाई देती हैं उससे लगता है कि काफी जो धनाढ्य संपन्न और मोदी जी के शब्दों में जो एम्बेसडर्स हैं प्रवासियों के, वो लोग आते हैं, लेकिन जो बड़ी आबादी है एनआरआईज की, गल्फ कंट्रीज में जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उनको जोड़ सका है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मंच अपनी ओर?
जी नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि खास करके जो श्रमिक वर्ग के लोग जाते हैं गल्फ में काम करने के लिए या बाकी और देशों में भी, कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है वो उन लोगों के लिए है। आपने देखा ही है अभी फिलहाल टेलीविजन में कि धनाढ्य दिखाई पड़ते हैं जो लोग वहाँ पे आते हैं, और मेरे ख्याल से उनकी जो समस्याएं हैं वो अलग किस्म की हैं। यहाँ आप देख लीजिए कि निवेश की बात हो रही है, और वहाँ तो जो जाते हैं खास करके यूपी और बिहार वगैरह से, वो जिस तरह का काम करते हैं वो अपने फैमिलीज को पैसे भेजते हैं जो ऋण में होते हैं, उनको ऋण से उभारने के लिए, या अगर जमीन किसी के पास गिरवी रखी तो उसको छुड़ाने के लिए, या अपना पक्का वगैरह मकान बनवाने के लिए। उनके ऊपर कोई खास बातचीत मुझे नहीं दिखाई पड़ती है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में। दूसरी बात यह है कि देखिए खास करके गल्फ के तरफ जाने वाले जो लोग हैं उसमें मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग हैं, और आपने देखा है जिस तरह से भगवाकरण किया हुआ है यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस को, कि आपने उसको सीधे कुंभ मेला से जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक आप देखिए कि एक्सक्लूजन का भी मामला चला आता है।
लंदन से ये थे प्रोफेसर सुबीर सिन्हा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सेना का कहना है कि चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ की एक घटना में आज 2 चरमपंथियों को मार गिराया गया। सेना का कहना है कि उन्होंने चरमपंथियों के होने की जानकारी मिलने के बाद एक तलाशी अभियान शुरू किया था जो मुठभेड़ में बदल गई। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के जिला शुपियां के शिरमाल गांव में मंगलवार सुबह को उस समय चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई जब सुरक्षा बलों की एक ज्वाइंट टीम को इलाके में चरमपंथियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस का कहना था कि सुरक्षा बलों ने जब इलाके को घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया तो इलाके में छुपे चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई कर 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से गोली बारूद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के पूर्व डीजी एसपी वैद ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि मारे गए चरमपंथियों में से एक चरमपंथी आईपीएस अधिकारी का भाई था जिनकी पहचान डॉक्टर शमशुल हक के रूप में हुई है। कश्मीर जोन के आईजी एसपी पानी ने बताया
और सुबह से इनकाउंटर चल रहा है, जब वो कंक्लूड हो जाएगा उस बारे में जो डिटेल्स है हम वो प्रेस के साथ शेयर कर सकते हैं।
पुलिस ने अपने एक प्रेस बयान में 3 चरमपंथियों को मारने की पुष्टि की है। मुठभेड़ के दौरान एक सैनिक भी घायल हो गया है। कल जिला बड़गाम में भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने 3 चरमपंथियों को मारने का दावा किया था। इस दौरान आज शुपियां में मुठभेड़ स्थल के नजदीक सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच झड़पों की भी खबरें हैं। शुपियां में इन झड़पों के दौरान 4 फोटो पत्रकार पैलेट लगने से घायल हो गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों पर चलाए गए पैलेट की सख्त निंदा की है। पैलेट लगने से घायल पत्रकार वसीम इंद्राबी ने बताया,
मेरे साथ मेरे दो और थे, दो फोटो जर्नलिस्ट थे, तो उनको ब्लड चोक लगा के था, ये प्रेस भी लिखा हुआ था। मैंने भी अपना कैमरा हाथ में उठा के उनकी तरफ इशारा किया कि हमको क्रॉस करना है तो हमको क्रॉस करने दीजिए। तो इतने में मतलब एक दो फीट ही हम आ गया निकले तो वहां से पैलेट्स आ गए। पता नहीं चला कि पैलेट्स जब आए तो फिर हम वापस आए वहां से, फिर मैंने देखा तो फिर पैलेट्स आए थे।
बीते साल कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में 250 से अधिक चरमपंथी मारे गए थे। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब कुंभ पर हमारी खास रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम किनारे रेतीली जमीन पर बसने वाले अस्थाई कुंभ नगर पर सरकार हर बार अरबों रुपए खर्च करती है, लेकिन उससे उसे कितनी आमदनी होती है या फिर राजस्व के लिहाज से उसे कोई लाभ होता भी है या नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हालांकि जानकारों का कहना है कि सरकार को प्रत्यक्ष लाभ भले ही न हो, लेकिन परोक्ष रूप से ये आयोजन सरकारों के लिए घाटे का सौदा भी नहीं होता है। सुनिए कुंभ नगरी से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
प्रयागराज में चल रहे कुंभ के आयोजन पर सरकार करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो कि पिछली बार हुए कुंभ की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। इसमें तंबुओं के अस्थायी शहर को बसाने के लिए आधारभूत संरचना पर होने वाला खर्च भी शामिल है। इसके अलावा अन्य मदों पर खर्च करने के लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने एक अनुमान लगाया है कि 49 दिनों तक चलने वाले इस मेले से राज्य सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए यानी करीब 12,000 अरब रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। हालांकि खुद सरकार ने इस तरह का कोई अनुमान अब तक नहीं लगाया है, लेकिन मेला क्षेत्र के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद कहते हैं कि सरकार को आय होती जरूर है।
मेला एरिया में जो दुकानें आवंटित करते हैं, हम टेलीकॉम टावर्स करते हैं, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अलाउ करते हैं और प्रीग्रिम ऑल, उसमें रेवेन्यू थोड़ा बहुत होता है, वो कोई मेजर जंग नहीं। वो इस बार हम लोग करीब 10 से 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू कमाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट रेवेन्यू फॉर द स्टेट बहुत सारे तरीके से होते हैं, उसमें हम स्टडी भी करा रहे हैं कुंभ एंड इकोनॉमी करके।
विजय किरण आनंद का कहना है कि पिछले कुंभ, अर्धकुंभ या फिर हर साल प्रयाग क्षेत्र में लगने वाले माघ मेले में अब तक इस तरह का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन अब किया जा रहा है। CII की रिपोर्ट की माने तो मेले के आयोजन से जुड़े कार्यों में 6,00,000 से ज्यादा कामगारों के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है। रिपोर्ट में अलग अलग मदों पर होने वाले राजस्व का आकलन किया गया है, जिसमें आतिथ्य क्षेत्र, एयरलाइंस, पर्यटन इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आय को शामिल किया गया है। यही नहीं, तमाम लग्जरी टेंट, बड़ी कंपनियों के स्टॉल इत्यादि की वजह से भी आय की संभावना जताई जा रही है। लेकिन लखनऊ के आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस इस आकलन को बहुत भरोसेमंद नहीं मानते हैं।
वो एक हाइपोथेटिकल अनुमान ही है जिसको कहीं से साबित नहीं किया जा सकता है। सरकार की तरफ से एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिकवरी उसके मुकाबले बहुत मामूली। जो बड़ी कंपनियों के स्टॉल आपको कुंभ में नजर आ रहे हैं, ये बड़ी कंपनियां भी बिजनेस के नजरिए से कम इस कुंभ के मेले को ब्रांडिंग के लिए, यानी कि अपनी रीच या अपना नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए कुंभ का को देखती हैं, कैसे उनका अधिकतम प्रचार हो सके, इस पर उनका जोर ज्यादा होता है।
बताया जा रहा है कि कुंभ में 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इस लिहाज से कुछ गणनाएं ऐसी भी की गई हैं कि यदि हर व्यक्ति लगभग 500 रुपये खर्च कर रहा है तो यह आंकड़ा करीब 700,000 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचता है। कुंभ और महाकुंभ का आयोजन क्रमशः 6ठे और 12वें साल पर होता है, जबकि इसी जगह पर प्रयागराज में माघ मेला हर साल लगता है। सरकार इन मेलों पर भारी मात्रा में खर्च करती है। वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि सरकार को सीधे भले ही राजस्व की प्राप्ति ज्यादा न होती हो, लेकिन परोक्ष लाभ पर्याप्त मात्रा में होता है।
एक्चुअली सरकार इस तरह की कोई भी आयोजन लाभ के लिए नहीं करती है और धार्मिक आयोजनों का वैसे भी लाभ से कोई बहुत रिश्ता नहीं है। सरकार की कोशिश ये होती है कि वैसे ऐसे आयोजन करती है तो उसका जो एग्रीगेट एक्सपेंस होता है, जो कुल उसकी खर्च उसका खर्च होता है, वो विभिन्न स्रोतों से होने वाली आमदनी से कम होता है। मतलब वो आमदनी सरकार को नहीं हो रही है पर इकोनॉमी में गति आती है। सरकार को प्रॉफिट लॉस के लिहाज से देखिए तो सरकार को लॉस है, पर एग्रीगेट रिसीट जो है वो इस पूरे इस तरह के आयोजन से सरकार जितना खर्च करती है उससे ज्यादा पैसा उस शहर की इकोनॉमी में, उस स्टेट की इकोनॉमी में पंप होता है, तो वो प्रॉफिट है।
कुंभ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पर सरकार भले ही लाभ को ध्यान में रखकर खर्च न करती हो, लेकिन यदि सरकारी आंकड़े खर्च की तुलना में आय ज्यादा दिखाते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार के दोनों हाथ में लड्डू होंगे। समीर आत्मज मिश्र, BBC प्रयागराज।
और अब एक खास रिपोर्ट। हैकिंग से जुड़ी खबरें पढ़ते वक्त आपने गौर किया होगा कि ऐसी अधिकतर खबरों में किसी युवा हैकर का नाम सामने आता है। हाल में जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के समेत सैकड़ों राजनेताओं का निजी डेटा जिस हैकर ने लीक किया था वो महज 20 साल का एक छात्र था। खुद को CIA के प्रमुख जॉन ब्रेनन के रूप में पेश कर CIA के खुफिया अभियानों से जुड़े कंप्यूटर में घुसने की कोशिश करने वाला एक शख्स भी 15 साल का किशोर था। तो क्या ये किसी एक तरह का पैटर्न है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह है? BBC संवाददाता मानसी दास ने इसकी पड़ताल की।
डेटा लीक हैकर, ये सुनते ही जो तस्वीर दिमाग में उतरती है वो अक्सर अंधेरे में टी शर्ट के हुड से सिर ढककर कंप्यूटर के सामने बैठे एक युवा की होती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि डेटा लीक से जुड़े अधिकतर मामलों की जो खबरें हमारे सामने आती हैं उनमें किसी किशोर या युवा का नाम होता है। एथिकल हैकर साई कृष्णा कोटपल्ली जब इंजीनियरिंग की पहले साल की पढ़ाई कर रहे थे तब उनके दोस्त ने उन्हें हैकिंग के बारे में बताया था। वो कहते हैं 2-3 साल उन्होंने केवल जिज्ञासा के कारण हैकिंग की।
जो यंग टीनेजर्स होते हैं उनके पास बहुत सारा टाइम होता है और क्यूरियोसिटी भी होता है और उनके लिए ना वो एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं कुछ चीज को हैक कर सकता हूँ एंड लाइक कि मैं मेरे दोस्त का फेसबुक मैसेजेस रीड कर सकता हूँ। चीज पे 10% डिस्काउंट है, मैं 90% डिस्काउंट ले सकता हूँ।
आनंद प्रकाश एथिकल हैकर हैं और अब एप सिक्योर नाम की कंपनी के CEO भी हैं। आनंद प्रकाश कम उम्र में फेसबुक, उबर और ट्विटर जैसी कंपनियों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी तलाश कर बग बाउंटी के रूप में कमाई करने के लिए भी जाने जाते हैं। 21 साल की उम्र में आनंद प्रकाश ने सबसे पहले हैकिंग की तो उन्होंने फेसबुक बग बाउंटी में हिस्सा लिया।
हैकिंग के थ्रू अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो तो उससे काफी ज्यादा रिवॉर्ड प्रोग्राम और जो अचीवमेंट जो शोकेस करती है बड़ी कंपनीज का काफी बेनिफिट हो जाता है यंगस्टर को, उसका कैरियर भी बन जाता है उस स्ट्रीम में। क्यूरियोसिटी मेन चीज होता है क्योंकि डेवलपर हर कोई होता है बट हैकिंग में काफी कम लोग होते हैं।
वहीं एथिकल हैकर राहुल कुमार सिंह ने 9-10 साल की उम्र में जब पहली बार हैकिंग की थी तब वो किसी और के कंप्यूटर में बिना उसकी जानकारी के घुसने के तरीके सीख रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी भी खोली और अब वो साइबर फोरेंसिक जांचकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। अब वो केवल अपने हुनर को बनाए रखने के लिए हैकिंग करते हैं।
हर घर घर का फोन पहुंच गया है, रोक टोक ज्यादा है। अब इंडिया में अब जो चीज आदमी को मिलता नहीं है उसको चोरी करता है, यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो उसको हैक करते हैं। चलो ये ऐसा चीज है कि कोई भी सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और एक होता है पैसा के लिए। मैंने बोला था ना पैसा और पावर में कौन बड़ा, पावर बड़ा।
एथिकल हैकर रिजवान शेख 16 साल की उम्र से हैकिंग के मैदान में हैं। आज वो साइबर क्राइम कंसल्टेंट के तौर पर काम करते हैं और एथिकल हैकिंग भी सिखाते हैं।
एक्सेसिंग इंटरनेट फ्री टाइम में और बिना काम के सबसे ज्यादा करते हैं टीनेजर्स, बच्चे एंड स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। लर्निंग एबिलिटी, क्विक ग्रास्पिंग, ऐसे एक्साइटिंग थिंग्स टीनेजर्स का माइंड सबसे ज्यादा रहता है।
रिजवान बताते हैं कि पहले वो ऑनलाइन गेम खेलते थे और फिर गेम के हैक खोजते थे। इस तरह वो ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज तक पहुंचे जहां हैकर्स थे। वो कहते हैं कि कहीं न कहीं ऐसे ही उस कच्ची उम्र में युवा की दिशा तय हो जाती है। तो फिर ऐसे में अपराध की तरफ कदम कब बढ़ जाते हैं? रिजवान शेख कहते हैं,
बेसिक से बेसिक चीज भी अगर आप ले लो हैकिंग में, जैसे कोई अगर कर रहा है ईमेल स्पूफ करेगा किसी की आईडी से या किसी का फेसबुक हैक करने की कोशिश करेगा, भले वो मजाक मस्ती में हो, बट इट्स अ वायलेशन ऑफ साइबर लॉ, सो दे बेसिकली एंड अप कमिटिंग क्राइम एंड दिस इज हाउ दे बेसिकली लर्न।
रिजवान कहते हैं कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कानून तो है, लेकिन ऐसे मामलों की रिपोर्ट कम होती है। हैकर्स की समझ जितनी तेजी से बढ़ती है, जांच अधिकारियों की उतनी तेजी से नहीं बढ़ती और इस कारण भी अपराध होते हैं। वहीं आनंद प्रकाश कहते हैं,
तुमको लगता है कि ये काफी फैसिनेटिंग है कि मैं एक कंपनी हैक कर लेता हूँ, उसका डेटा डाउनलोड कर लेता हूँ, तो उसकी मन की संतुष्टि के लिए वो काफी अर्ली स्टेज में होते हैं, गलती कर बैठते हैं जो आगे जाके उनको जेल के पीछे भी डाल सकते।
अपने अनुभव के बारे में साई कृष्ण कोटपल्ली कहते हैं कि वो बग बाउंटी का काम करने लगे थे, जो उन्हें पसंद आया क्योंकि इसमें अच्छा पैसा भी मिलता था। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने बग बाउंटी हैकर्स हैं, उनमें से अधिकतर 23% भारत में हैं। इनमें से 90% हैकर्स युवा हैं। साई कृष्णा कोटपल्ली हैक्रियो नाम की कंपनी के सीईओ हैं और तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर सरकारी वेबसाइटों और सॉफ्टवेयर को हैक प्रूफ बनाने के काम में लगे हैं। वो समझाते हैं कि एक उम्र के बाद हैकिंग छोड़ दी जाए ऐसा नहीं होता, ये एक हुनर है जो सीखा जाता है। हालांकि अगर इसके खतरों के बारे में पता हो तो आप गलतियां नहीं करेंगे।
मैं प्रोफेसर भी जो जानते थे मुझे, वो भी मुझे एडवाइस करते थे कि कुछ मिला इम्पोर्टेंट चीज ऐसे हमारे नेटवर्क में कही तो उसको मिसयूज मत करना कभी, हमें आके बताओ सीधा।
आनंद प्रकाश ने पुलिस के साइबर सेल के साथ इंटर्नशिप की थी, जहां उन्हें एथिकल और नॉन एथिकल हैकिंग के बारे में बताया जाता था।
वो एक मेरे लिए काफी बड़ा डिफेंस फैक्टर था, बाकी जो एथिकल हैकर्स है अगर उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो, अगर नॉर्मल एजुकेशन में हम लोग ये डालने लग जाए साइबर सिक्योरिटी, मुझे लगता है कि मतलब काफी कम रेशियो हो जाएगा।
वहीं अपने अनुभव से राहुल कुमार सिंह कहते हैं,
बुरा काम में भविष्य नहीं है। बुरा काम में हम एक बार 1,00,000 कमाएंगे, 10,00,000 कमाएंगे, 1,00,00,000 कमाएंगे, लेकिन जिस दिन अंदर जाएंगे मेरा पूरा फैमिली उसमें घिस जाएगा।
जिन जिन एथिकल हैकर्स से मैंने बात की, उन सभी ने मुझसे एक बात कही,
चोर कैसे काम करते हैं अगर पुलिस को पता है, देन ओनली दे कैन बी अ गुड कॉप। टू बिकम अ गुड एथिकल हैकर, वन मस्ट बी अनएथिकल फर्स्ट।
ज्यादातर हैकर्स यही मानते हैं कि हैकिंग से आपको केवल सीखना होगा कि हैकर्स किस तरह के रास्ते अपना सकते हैं, अगर आप सीखें तो आप बेहतर हैकर बनेंगे, लेकिन आखिर में आपकी अपनी समझ ही आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। मानसी दास, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। आज बात क्रिकेट की। आईसीसी अवार्ड्स 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने धूम मचा डाली। 2018 विराट कोहली के लिए तमाम सफलताएं लेकर आया और अब उन्हें इसका फल भी मिल रहा है। विराट को आईसीसी अवार्ड्स में मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। विराट इसके अलावा आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुने गए और दोनों टीमों के कप्तान नियुक्त किए गए। इस तरह से क्रिकेट इतिहास में विराट पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिसने एक ही साल में ये तीन मेजर आईसीसी अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। इसी के साथ कल यानी 23 जनवरी से टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा शुरू होगा। दोनों देशों के बीच पहला वनडे मैच कल नेपियर के मैकलीन पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज में कुल 5 वनडे मैच खेले जाने हैं। और वहीं आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही टीमें अपने अपने घर में भारी रही हैं। लेकिन इस सीरीज का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले ये दोनों टीमों के लिए अपनी ताकत और खिलाड़ी परखने का शानदार मौका है। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और सभा समापन से पहले मुख्य समाचार गुरप्रीत कौर से।
बीबीसी समाचार। ईवीएम के कथित हैकिंग के दावों को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। भाजपा ने इसे कांग्रेस प्रायोजित कहा है। वहीं विवादों के केंद्र में आए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मामले की जांच कराने की मांग की है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मननगागवा ने देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ उपजे असंतोष के बीच वो अपना एक विदेशी दौरा बीच में ही छोड़कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। रूस की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में पकड़े गए एक पूर्व अमरीकी नौसैनिक की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। पॉल वेलन को दिसंबर के आखिर में गिरफ्तार किया गया था। भारत के त्रिपुरा राज्य की पुलिस ने 31 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।